From the conference center
Salt Lake City में Temple Square पर सम्मेलन केंद्र से यह द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स का 181 अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन है। इस चर्च के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे। इस सत्र का संगीत मॉर्मन टैबरनेकल क्वायर द्वारा होगा। यह प्रसारण बॉनेविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा में रूप के में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित हैं। प्रेसिडेंट हेनरी बी आयरिंग, फर्स्ट काउंसलर इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द चर्च, इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों,
we welcome you this afternoon.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints के 181 अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन के इस दोपहर के पांचवें और अंतिम सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन, जो कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता हैं, मुझे कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम सभी स्थानों पर चर्च के सदस्यों और कई मित्रों को शुभकामनाएं और आशीष देते हैं, जो कि इन कार्यक्रमों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण के द्वारा भाग ले रहे हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन टैबरनेकल क्वायर द्वारा मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में होगा। गायक मंडली इस सभा का आरंभ अराइज ओ गॉड एंड शाइन गाकर करेगी। इसके बाद सत्र के एल्डर एफ माइकल वॉटसन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद गायक मंडली आई फील माई सेवियर्स लव गाएगी।
My soul, God, and shine in all I say.
Heavenly Father,
आज के सभा के दिन में चर्च के सदस्य जो वेला हुई है आपकी प्रशंसा के लिए आपकी आशीष के लिए हम आपके प्यार करते हैं आपकी सेवा काय आपके पुत्र की सेवा काय के लिए सत्य के रास्ते के लिए
We pray this day for
हम प्रार्थना की हम अगमकता के प्यार करते हैं
We pray for the counselors in the first presidency.
प्रथम अध्यक्षता और सलाहकार को हम प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते हैं मिशनरी के लिए हम आभारी हैं जो हर दिन बाहर जाते हैं सुसमाचार सुनते हैं इस सभा में जो हम सुन रहे ताकि हम आगे कार्य बन सके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन
We will now be pleased
to hear. Quorum of the 12 Apostles, ke Elder Russell M. Nelson or Elder Dallin H. Oaks ko sunenge. Unke baad Sunday School General Presidency mein Second Counselor Brother Matthew Richardson bolenge.
One week after a recent assignment to create the first stake in Moscow, Russia, I attended a district conference in St. Petersburg. While speaking about my gratitude for early missionaries and local leaders who brought
पत्नी ने उस कार्यभार में शानदार काम किया था आपने मिशन पूरा करने के कुछ समय बाद ही अध्यक्ष इफिमोव को दुखद मृत्यु हो गई थी वह केवल 52 वर्ष के थे इस पथ प्रदर्शक दंपति के विषय में बोलते समय मैं लोगों के बीच पूछने के लिए प्रभावित हुआ कि क्या बहन इफिमोव वहां उपस्थित थी दूर पीछे एक स्त्री खड़ी हुई मैंने उसे माइक के पास आने का निमंत्रण दी हां वह बहन कलीना इफिमोव थी वह दृढ़ता से बोली और प्रभु उसके सुसमाचार और उसके पुनर्स्थापित गिरजे के प्रभावशाली गवाही दी वह और उसके पति पवित्र मंदिर में मोहरबंद हुए थे वो हमेशा के लिए एक हो गए थे वो दोनों अभी प्रचारक साथी थे वह पर्दे के इस तरफ है और उनके पति दूसरी तरफ आंखों में खुशी के आंसू के साथ उसने पवित्र मंदिर अनुबंधों के परमेश्वर का धन्यवाद दिया मैं भी रोया है जानते हुए कि इस विश्वासी दंपति की एकता पवित्र अनुबंधों को बनाने पालन करने और सम्मान करने का परिणाम थी सच्चे धर्म की अत्यधिक महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक पवित्र अनुबंध के बारे में है कानूनी भाषा में अनुबंध में सामान्यता दो या अधिक पक्ष होते हैं लेकिन धार्मिक संदर्भ में अनुबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यह परमेश्वर के साथ पवित्र अनुबंध है वह इसके नियम बनाता है प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों को स्वीकार करने का चुनाव कर सकता है यदि कोई परमेश्वर के कानून के अनुबंध को नियम को स्वीकार करता और पालन करता है वह उस अनुबंध के साथ जुड़ी आशीष को पाता या पाती है हम जानते हैं कि हम जब हमें परमेश्वर से कोई आशीष मिलती है यह हमारे उस नियम की आज्ञाकारिता के कारण होती है जिसके साथ वह आशीष जुड़ी होती है ईगो से परमेश्वर ने अपने बच्चों के साथ अनुबंध बनाए हैं उसके अनुबंध पूरी उद्धार की योजना में आते हैं और उसके सुसमाचार की परिपूर्णता का हिस्सा है उदाहरण के लिए परमेश्वर ने अपने बच्चे के लिए उद्धारकर्ता भेजने का वादा किया था बदले में उनसे उसके कानून का पालन करने को कहा था बाइबल में हम पुरानी दुनिया में ऐसा पुरुषों और स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें अनुबंधों के बच्चों के रूप में जाना जाता है अनुबंध क्या है अनुबंध जो परमेश्वर ने उनके पूर्वज इब्राहिम के साथ यह कहकर बनाया था और तुम्हारे वंश में पृथ्वी का सभी जातियों आशीषित होगी मर्मन की पुस्तक में नई दुनिया को के लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो कि अनुबंध के बच्चे के रूप में पहचान गए थे पुनरुत्थापित प्रभु ने उन्हें कहा और सुनो तुम भविष्य वक्ता के संतान हो और तुम इसराइल के घराने के हो कराने के हो और तुम उनके वंश के लोग हो जिनके पिता इब्राहिम से पिता ने यह कहते हुए अनुबंध बनाया था तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीषित होगी उदारकर्ता ने उनके अनुबंध के बच्चे के रूप में पहचान के महत्व को समझाया था उसने कहा था पिता ने मुझे तुम्हारे लिए प्रथम खड़ा किया तुम्हें तुम में से हर एक को पापों से मुख मुड़ाने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देने के तुम्हारे पास भेजा है, और यह इसीलिए कि तुम उस वचन दिए लोगों की संतान हो। अब्राहम और बाद में इसहाक और याकूब के साथ पुनः पुष्टि किए परमेश्वर के अनुबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। ईसा मसीह इब्राहिम के वंशजों द्वारा पैदा होगा। इब्राहिम की संतान अनगिनत होगी, अनंत रूप से बढ़ेंगे और पौरोहित्य धारण करने के अधिकारी होंगे। इब्राहिम बहुत से राष्ट्रों को पूर्वज होगा। निश्चित देशों के को उसकी संतान की विरासत में दिया जाएगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्र उसके वंशजों द्वारा आशित किए जाएगी, और यह अनुबंध सदैव कायम रहेगी हजारों पीढ़ियों तक भी। इनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं, कुछ पूरी होनी बाकी हैं। मैं मर्मन की पुस्तक की भविष्यवाणियों को बताता हूँ। इसीलिए हमारे पिता ने केवल हमारे वंशजों के बारे में ही नहीं कहा, बल्कि पूरे इसराइल के घराने के विषय में कहते हुए उस वचन के विषय में भी कहा जो अंतिम दिनों में पूरा किया जाएगा। वह वचन प्रभु ने हमारे पिता इब्राहिम को यह कहते हुए दिया था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यीशु ने बैतलहम में पैदा होने कुछ 600 वर्ष पहले भविष्यवक्ता जानते थे कि इब्राहिम का अनुबंध अंततः केवल अंतिम दिनों में पूरा होगा। इस प्रतिज्ञा का पूरा होने की मदद के लिए प्रभु इब्राहिम के उस अनुबंध को नवीन करने के लिए अंतिम दिनों में प्रकट हुआ था। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को स्वामी ने बताया था, इब्राहिम ने अपने संतान और उसके वंशजों के संबंध में प्रतिज्ञा पाई थी जिससे जोसेफ संबंध रखते थे। प्रभु ने उसे यह भी बताया था कि वह उसके साथ वही प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान का हिस्सा है। इस नवीकरण के साथ हमें पवित्र पौरोहित्य और अनंत सुसमाचार के मिला था, जैसा कि पुराने समय में उन्हें मिला था। हमें सुसमाचार की परिपूर्णता को पाने, पौरोहित्य के आशीष को आनंद लेने और परमेश्वर की महानतम आशीष अनंत जीवन के योग्य होने का अधिकार है। हम से कुछ इब्राहिम के वास्तविक वंशज हैं, अन्य को गोद लेकर उसके परिवार में शामिल किया गया है। प्रभु कोई भेदभाव नहीं करता। हम मिलकर इन प्रतिज्ञा की गई आशीषों के प्राप्त करते हैं। यदि हम प्रभु को खोजते हैं और इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अनुबंध के आशीषों को खो देते हैं। हमारी मदद करने के लिए उसका गिरिजा कुलपति की आशीष देता है, इन्हें पाने वाले की अपने भविष्य की समझ के साथ साथ अतीत का संबंध इब्राहिम इसहाक और याकूब से मिलता है। अनुबंध के भाइयों के पास पौरोहित्य के वादों पर अनुबंध के योग्य होने का अधिकार है। यदि तुम विश्वसनीय रहते और इन दो पौरोहित्य का प्राप्त करते और आप अपनी नियुक्ति को बढ़ाते हैं, तुम्हारे शरीर को नवीन करके तुम्हें आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुरुष जो योग्यता से पौरोहित्य प्राप्त करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्राप्त करते हैं, और जो प्रभु के प्राप्त करते हैं, वो पवित्र पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, और जो पिता को प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो उसके पास है। इस वादे और अनुबंध से पूरे विश्व में योग्य पुरुष स्त्रियों और बच्चों की को शानदार आशीषें मिलती है। इब्राहिम के अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी संतान को इस विश्व के सभी लोगों के आशीष देने के लिए पहले से ही अभिषेक और तैयार किया है। इसीलिए इसीलिए पौरोहित एक कर्तव्य में प्रचारक कार्य शामिल है। लगभग 40,000 साल की प्रतीक्षा और तैयारी के बाद यह निर्धारित लगभग 4,000 साल की प्रतीक्षा और तैयारी के बाद यह निर्धारित समय है जो सुसमाचार की को पृथ्वी को जातियों के पास ले जाया जाता है। इसराइल को एकत्रित करने का प्रतिज्ञा किया हुआ समय है और हमें इसमें शामिल होना है। क्या यह उत्साहजनक नहीं है? प्रभु हम और हमारे बेटों पर भरोसा कर रहा है और वह हमारी बेटियों का अत्यधिक आभारी है जो इसराइल के एकत्रित होने के महान समय में योग्यता से प्रचारक सेवा कर रहे हैं। मार्मन की पुस्तक एक प्रत्यक्ष चिन्ह है कि प्रभु ने अपने अनुबंधित इसराइल को बच्चे को एकत्रित करना शुरू कर दिया है। यह पुस्तक हमारे समय के लिए लिखी गई है जैसे कि इसके उद्देश्य में से एक में लिखा है कि पिता ने जो वचन इसराइल के वंश वालों को वह पुराना होना आरंभ हो चुका है वो पूरा होना आरंभ हो चुका है क्योंकि प्रभु आपने उस वचन का स्मरण रखेगा जो उसने इसराइल के घराने वाले आपने लोगों को दिया था। सच में प्रभु भूला नहीं है। उसने मार्मन की पुस्तक से पूरे संसार में हमें और दूसरे को आशीषित किया है। इसके एक उद्देश्य में से एक दोषों में से एक है। यह हमें परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने की मदद करती है। यह हमें उसे याद करने और उसके प्रिय पुत्र को जानने के लिए निमंत्रण देती है। यह यीशु मसीह का अन्य नियम है। अनुबंध को के बच्चों को उसके सिद्धांत पाने और उतार की योजना जानने का अधिकार है और इस पवित्र अनुबंधों का बनाकर कर इसे पाते हैं। ब्रिगम यंग ने कहा था सभी अंतिम दिनों के संत नए और अनंत अनुबंधन में प्रवेश करते हैं जब वो इस गिरजे में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के राज्य को समर्थन करने के लिए वो नए और अनंत अनुबंध में प्रवेश करते हैं। वो उसकी आज्ञाओं के पालन करके अनुबंध का पालन करते हैं। बपतिस्मे के समय हम प्रभु को सेवा करने और उसकी आज्ञा का पालन करने का अनुबंध करते हैं। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं हम उस अनुबंध को नवीन करते हैं और यीशु मसीह के नाम को अपने ऊपर धारण करने की इच्छा की घोषणा करते हैं। इस प्रकार हम उसके गोद लिए बेटे और बेटियां बनते हैं और भाई और बहन की तरह जाने जाते हैं। वह हमारे नए जीवन का पिता है। अंततः हम पवित्र मंदिर में अनंत परिवार के उत्तराधिकारी बन जाते हैं जैसे एक समय इब्राहिम इसहाक याकूब और उनकी संतान को किया गया था। इस प्रकार सेलेस्टियल विवाह उत्कर्ष का अनुबंध है। जब हम महसूस करते हैं कि हम अनुबंध के बच्चे हैं हम जानते हैं हम कौन हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो हमारे परमेश्वर हैं और हम उसके लोग हैं। अनुबंध के कटिबद्ध बच्चे विश्वास में मजबूत रहते हैं परीक्षाओं के बीच भी। जब वह यह सिद्धांत हमारे हृदयों में गहरे से अंकित हो जाता है मृत्यु का डंक भी कुछ नहीं लगता और हमारी आत्मिक सहन शक्ति मजबूत होती है। महानतम प्रशंसा जो इस जीवन में मिल सकती है वह अनुबंध का पालन करने वाले हैं। अनुबंध का पालन करने वाले का इनाम यह और यहाँ का बात दोनों जगह महसूस किया जाएगा। धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं कि तुम उन आशीष प्राप्त और आनंदित लोगों की स्थिति को ध्यान में रखो जो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करते हैं क्योंकि देखो उन सभी बातों में आशीर्वाद प्राप्त हैं और अगर वो अंत तक सच्चे रहे जब उनका स्वर्ग में ले लिया जाएगा जिससे कि वह अनंत सुख की स्थिति में परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर जीवित है। यीशु ही मसीह है। उसका गिरजा सभी लोगों के आशीष करने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है। अध्यक्ष थॉमस एस मंसन वर्तमान में उसके भविष्य वक्ता है और हम अनुबंध के विश्वसनीय बच्चों के रूप में अब और हमेशा आशीषित किए जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में गवाही देता हूँ। आमीन।
What think ye
के विषय में तुम क्या सोचते हो? इन शब्दों के साथ यीशु ने फारसियों को चकित कर दिया था। इन्हीं शब्दों से मैं अपने अंतिम दिनों के संतों और अन्य मसीहियों से पूछता हूँ कि तुम वास्तव में यीशु मसीह के विषय में क्या विश्वास करते हो और तुम इस विश्वास के कारण क्या कर रहे हो? मैं अधिकतर धर्मशास्त्र उदाहरण बाइबल से हैं, क्योंकि बहुत से मसीह ही इनसे परिचित हैं। मेरी व्याख्याएं अवश्य ही आधुनिक धर्मशास्त्र मुख्य रूप से मॉर्मन की प्रयोग से आएंगी, जो बाइबल के धर्मशास्त्र के बारे में सिखाएंगी। मैं विश्वासियों के साथ साथ अन्य को भी संबोधन कर रहा हूँ, कुछ जो स्वयं को मसीह कहते हैं, यीशु की एक महान शिक्षक के रूप में प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उसकी दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने बारे में क्या सिखाया और उन्हें पृथ्वी पे क्या करने के लिए भेजा गया था। यीशु ने सिखाया कि वह इकलौते पुत्र थे। उन्होंने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत के द्वारा उद्धार पाए। पिता परमेश्वर ने इसका अनुमोदन किया था रूपांतर के पवित्र पर्वत पर। पवित्र अनुभव के समापन उन्होंने घोषणा की थी, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यीशु ने भी सिखाया था कि उसका रूप रंग उसके पिता के समान था। अपने प्रेरितों को उन्होंने कहा था, यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप ने उससे कहा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखाइए। यीशु ने कहा, फिलिप, इतने दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्यों तू कहता है कि पिता को नहीं देखा है? इसके प्रकार अपोस्टल पॉल ने पुत्रों को कहा, उसके पिता परमेश्वर के तत्व की छाप बताता है। प्रेरित जॉन ने लिखा था कि यीशु, जिसे उसने वचन कहा था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। पिता ने की योजना के अंतर्गत यीशु मसीह सब वस्तुओं की सृष्टि करता है। पैलेस्टीन में अपने लोगों की सेवकाई के दौरान इसराइल का प्रभु था, बाद में पुनर्जीवित प्रभु के रूप में अमेरिका महाद्वीप पर अपने लोगों के सेवा की थी। वहां उन्होंने घोषणा की थी, सुनो, मैं ईसा मसीह हूँ। इसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि मैं जगत में आऊंगा। कई साल पहले एक स्टेट कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में एक स्त्री मुझे मिली जिसने कई साल बाद वापस गिरजा में आई थी, लेकिन उसने कहा कि मैं क्यों आऊं। उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैंने उससे कहा कि जब तुम उन बातों पर विचार करती हो कि उद्धारकर्ता ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो क्या आपके पास कोई नहीं बचता? तो उन्होंने कहा, उसने मेरे लिए क्या किया है, उनके लिए जो नहीं जानते कि हमारे लिए उद्धारकर्ता ने क्या है। मैं इस प्रश्न का जवाब उसके स्वयं के शब्दों में अपने स्वयं की गवाही के साथ दूंगा। बाइबल में यीशु मसीह ने शिक्षा का अंकित करती है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और मैं बहुत से पाएं। वह संसार के जीवन है क्योंकि वह हमारा सर्व सृष्टि करता है और क्योंकि उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम सब सुनिश्चित हैं कि हम फिर से जीवित होंगे। उसने सिखाया था, मैं अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे और न ही कोई उनके मेरे हाथ में लेगा। उसने ये भी कहा था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। वह मार्ग है और वह ज्योति की, क्योंकि उसकी शिक्षाएं हमारे नश्वर जीवन को मार्ग को प्रकाशित करती हैं और हमें पिता के पास वापस जाने में मार्गदर्शन करती हैं। हमेशा यीशु ने पिता का सम्मान और उनके अनुसार काम किया था। एक युवा के रूप में भी अपने संसारिक माता पिता को कहता था, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। और उद्धारकर्ता ने सिखाया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम पिता के पास अच्छी उसकी इच्छा पूरी करने के द्वारा जा सकते हैं। यीशु ने सिखाया था, जो मुझसे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसने समझाया था, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किए और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला है और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने सिखाया, बार बार वह हमें उसके पीछे चलने के लिए निमंत्रण देते थे। मेरे भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, वह और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वरिष्ठ प्रेरित पत्सर को उसने कहा था, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बाद में इन स्तर के आनंद से यीशु ने कहा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, उस पुरोहित अधिकार में गवाह हूँ। अपनी पृथ्वी की सेवकाई के अंत में यीशु ने अपने प्रेरितों को सिखाया था, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगी और जो कुछ तुम्हें तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। वह अपनी आज्ञाओं द्वारा मार्गदर्शन भी देता है। इस प्रकार उसने इफाइटियों को आज्ञा दी थी कि वे सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद ना करें, क्योंकि उसने कहा था, जो कोई वाद विवाद की भावना रखता है वो मेरी नहीं परंतु शैतान की है, जो कि कलह का जन्मदाता है और वह लोग के हृदय के एक दूसरे से लड़ने के लिए भड़काता है। सुनो, लोगों के हृदयों के एक दूसरे से विरोध क्रोधित करना से मेरा सिद्धांत नहीं है। मेरा सिद्धांत है कि इससे इन बातों को दूर करना। जीवन के रोटी के अपने महान उपदेश में यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बीच अंतर समझाया। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, उसने कहा, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उदारकर्ता ने सिखाया था कि वह जीवन की रोटी है, अनंत भोजन का स्रोत था। नश्वर जीवन के विषय में बोलते हुए जो संसार देता मना सहित जो यहोवा ने इसराइल के बच्चों को पेट भरने के लिए निर्जन प्रदेश में दिया था, यीशु सिखाता है कि जो इस रोटी पर निर्भर रहता है वह अब मर चुके हैं। इसके विपरीत जो उसने दिया वह जीवन, ऐसा लगता है उन्होंने उसकी पहली शिक्षा को स्वीकार नहीं किया था कि उन्होंने स्वर्ग राज्य की खोज पहले करनी चाहिए। वे वस्तुओं जो पृथ्वी के जीवन को तो पोषण देती हैं, लेकिन अंदर जीवन का कोई पोषण नहीं करती। कुछ के लिए उसकी नागवार बात आज भी मसीह का अनुसरण न कर्म करना है। हमारे उद्धारकर्ता ने नश्वर सेवकाई का समापन, उसका पुनरुत्थान और संसार के पापों के लिए उसका प्रायश्चित था। यह परमेश्वर का मानना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। बाद में यीशु ने सिखाया था कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि आप सेवा ठल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। निफाइटियों को प्रकट होने के लिए पुनर्जीवन प्रभु ने उन्हें आगे बढ़कर उसके कीलों के निशान को महसूस करने के लिए बुलाया, और वर्णन जारी रहता है, भीड़ आगे मसीह के पैरों पर गिरती है और उसकी उपासना करती है। इसके लिए संपूर्ण विश्व अनंततः उसकी उपासना करेगा। यीशु ने उसके प्रायश्चित के विषय में बहुमूल्य सच्चाइयां सिखाई थीं। मॉर्मन की पुस्तक जो कि उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को विस्तार से बताती है और उसके मिशन पर उत्तम व्याख्या करती है, इस शिक्षा की चर्चा करती है। पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं क्रूस पर ऊपर उठ जाऊं, कि जिससे मैं मनुष्यों को अपने ओर आकर्षित करूं, कि उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा, और जो भी कोई पश्चाताप करेगा और अपने नाम पर बापतिस्मा लेगा और परिपूर्ण होगा, और अगर वह अंत तक सहनशील बना रहेगा, तब इस दिन मैं जगत का न्याय करने के लिए खड़ा होऊंगा। उस दिन मैं पिता के समक्ष उसे निर्दोष मानूंगा। जो कोई भी उसके विश्राम गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। और इस प्रकार हम समझते हैं कि यीशु मसीह का प्रायश्चित हमें आत्मिक मृत्यु पर विजय पाने का अवसर देता है, जो कि पाप का परिणाम है। अनंत जीवन की आशाएं मिलती हैं। यीशु ने चुनौती जारी की थी, तुम्हें मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में चुनौती दी थी, अपने आप को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? अनंत हमारी निष्ठा कहाँ है? क्या हम एल्डर मैक्सवेल की व्याख्या के मसीहों के समान हैं, जिन्हें अपने घर जायोन में बसा लिया है, लेकिन फिर भी अपना दूसरा घर बाबुल में रखा हुआ है? हमारी निर्भरता उसके गिरजा और उसके सुसमाचार में है, और हमें बाबुल जाने के अपने विजी के प्रयोग या उनके नागरिकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस संसार की वस्तुओं की खोज नहीं करनी, लेकिन पहले परमेश्वर का राज्य का निर्माण करना। यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौते और प्रिय बेटे हैं। वह हमारा सृष्टिकर्ता है, वह जगत की ज्योति है, वह मृत्यु और पाप से हमारा उद्धार करते हैं। यह ज्ञान पृथ्वी पर अनंत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा जो पिता और पुत्र की गवाही देती है और सच्चाई की ओर ले जाती है, ने मुझे इन सच्चाइयों को प्रकट किया है, और वह उन्हें पाप पर प्रकट करेगा। इच्छा और आज्ञाकारी इसका मार्ग है। यीशु मसीह ने सिखाया, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इन बातों की सच्चाई की गवाही देता हूँ। आमीन।
Many years ago, I was with my
family. मैं अपने साथी के साथ पचवा शिक्षा केंद्र में था, जब मैंने आवाज सुनी, दादी जी, क्या वो असली पचावक हैं? मैंने पीछे मुड़कर एक छोटी लड़की को हमारे ओर इशारा करते देखा। मैं मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, सीधे आंखों में देखते हुए, हेलो, मैं अल्डर रिचर्डसन हूँ और हम असली पचावक हैं। उसने अपने चमकते चेहरे के साथ मेरी ओर मुड़कर देखा। उत्सुक को वो असली पचावकों के बीच थी। मैं नए समर्पण के साथ आगे बढ़ा। मुझे उस तरह का पचावक बनना था जिसे उद्धारकर्ता, मेरे परिवार और वो छोटी लड़की मुझसे आशा करती थी। अगले 2 साल मैंने असली पचावक जैसे देखने, सोचने, कार्य करने और सीखने की बहुत कोशिश की। घर लौटने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने तो मिशन छोड़ा था, पर मिशन ने मुझे नहीं छोड़ा था। कई सालों के बाद भी लगता है कि वो 2 साल जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे। अनपेक्षित मुझे अब भी उस बालिका की आवाज़ सुनाई देती है। सिर्फ अब मैं मन में सोचता हूँ, नानी, क्या वो असली पौरोहित्य नेता है? नानी, क्या वो असली पति या पिता है? क्या वो गिरजे का असली सदस्य है? सभी पहलुओं में असली बनने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे तरीके से शिक्षा दें कि शिक्षण में बाधा न आए। असली जिंदगी में असली शिक्षण की जरूरत है, जो असली शिक्षा पर निर्भर है। प्रभावशाली ढंग से सिखाने की जिम्मेदारी से बुलाए हुए शिक्षकों की नहीं है, पर परिवार के हर सदस्य, गिरजे के हर नेता और हर सदस्य की है, युवाओं और बालकों की भी। हम सभी शिक्षक हैं, पर हमें समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा सभी सच्चाई की शिक्षक और गवाह है। जो ये पूरी तरह नहीं समझते, या तो पवित्र आत्मा का कार्य खुद करने की कोशिश करते हैं, या उसे सिर्फ विनम्रता से सहायक के रूप में निमंत्रण देते हैं, या विश्वास करते हैं कि सब शिक्षा पवित्र आत्मा देगी और खुद उचित तैयारी नहीं करते। हर पालक, नेता और शिक्षक आत्मा के साथ सिखाने की जिम्मेदारी है उनकी। उन्हें आत्मा आने के पहले या जाने के बाद नहीं, तो आत्मा के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि वो बिना बाधा सच्चाई सिखा पाए। पवित्र आत्मा के साथ सिखाना चाहिए, उसके बदले उसका प्रभाव घटाने या उसे शिक्षक अस्वीकार। मोनी ने कहा कि पवित्र आत्मा के साथ सिखाना चाहिए, उसके बदले उसका प्रभाव घटता है और उसे शिक्षक अस्वीकार करते हैं। मौनी सिखाता है कि संतों ने उनके कार्य आत्मा के कामों के अनुसार किए। इसके लिए केवल पवित्र आत्मा साथ होना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार व्यवहार करने का अर्थ है सिखाने का ढंग बदलना पड़ेगा। हमें आत्मा के संभव करने से वो बिना बाधा सिखा सकता है। इस जरूरी समरूपता की ये नमूना है। कई साल पहले मेरे बच्चे और मैं साउथ सिस्टर की चोटी के पैदल यात्रा कर रहे थे। कई घंटों बाद हमने एक ज्वालामुखी की कंकड़ों से भरी ढलान पाई। हमें चोटी नजर आई, हम आगे बढ़े, पर हर कदम पर हम कंकड़ों में डूबते। हम कई इंच नीचे खसकते। मेरा 12 साल का बेटा चढ़ान पर बढ़ता गया, पर मेरी 8 साल की बेटी जल्द ही थक गई और निराश होने लगी। उसका दिल टूटा। उसने सोचा वो अपने भाई के साथ शिखर पर नहीं पहुंच पाएगी। मैंने सोचा मैं उसे उठाकर ले जाऊं। मेरी आत्मा तैयार थी पर शरीर कमजोर था। हम उन पत्थरों पर बैठे, थोड़ा सोचा और नई योजना बनाई। मैंने उसे मेरी पतलून की पिछली जेब को कस कर पकड़ने कहा और सबसे आवश्यक मैं पाँव उठाते ही अपना पाँव उसी जगह रखे। उसने मेरे हर चाल की नकल की। मेरी जेब को पकड़ने से उसे मूली उठान पर निर्भर रही। काफी देर बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उसका वो संतुष्ट विजयी भाव अनमोल था। और हाँ, मेरे अनुसार वो दोनों असली पैदल चालक थे। मेरी बेटी की सफलता उसकी कड़ी मेहनत और मेरे चाल की नकल का नतीजा था। ताल मिलाने से वो अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर पाई और मैं भी। ऐसा ही होता है आत्मा के कामों के अनुसार सीखने से, हमारे सीखने के तरीके को पवित्र आत्मा के तरीके के साथ मिलाने से। वो हमें शक्ति देती है और खुद बंधित नहीं होती। ये याद रखते हुए कि इन दो मूल आत्मा के कार्यों पर कृपया गौर करें। पहले, पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते हैं। वो हमें सच्चाई व्यक्तिगत रूप से समझना मुमकिन करती है। हमारी भिन्न जरूरतें, स्थिति और विकास के कारण वो हमें सिखाती हैं जो हमें जानना चाहिए, वो बनने के लिए जो हमें बनना चाहिए। याद रखो कि पवित्र आत्मा सब बातों में इसकी सच्चाई सिखाती है। सभी एक समय नहीं, पर लकीर, तत्व पर तत्व, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा। जो आत्मा के अनुसार सिखाते हैं जानते हैं कि वो लोगों को सिखाते हैं, पाठ नहीं। वो निर्देशक का पुस्तक से अपनी जानकारी के सब कुछ पढ़ाने की इच्छा पर काबू पाते हैं और उनके परिवार या कक्षा सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पालक, नेता और शिक्षा जो आत्मा को के सिखाने के ढंग की नकल करते हैं, जल्द सीखते हैं कि असली शिक्षा में केवल बात नहीं करते, बीच में सुनते हैं, रुकते हैं, निरखते हैं, फिर परखते हैं कि क्या करना चाहिए। ये करने से पवित्र आत्मा दोनों सिखाने और सीखने वालों को सहायता देती है क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। दूसरे, पवित्र आत्मा निमंत्रण, उत्तेजन, प्रोत्साहन द्वारा हमें कार्य करने प्रेरित करती है। मसीह विश्वास दिलाता है कि सिद्धांत पालने से हम उसकी सच्चाई जानेंगे। आत्मा निर्देशित द्वारा दिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, पर वो हमें हमारे लिए कार्य नहीं करेगी जो हम खुद कर सकते हैं। जैसे हम खुद कर सकते हैं उसे वो करेगी नहीं। वो चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है। वो हमें मौके दे सकते हैं और सीखने, महसूस करने और कार्य करने निमंत्रण दे सकते हैं। जो आत्मा जैसे सिखाते हैं, दूसरों को निमंत्रण और प्रोत्साहन द्वारा चुनाव शक्ति का इस्तेमाल का मौका देते हैं। पालक, नेता और शिक्षक समझते हैं कि वो दूसरों के लिए महसूस, सीख या पछता नहीं सकते। ये पूछने की बजाय कि मैं अपने बच्चों, कक्षा सदस्यों और दूसरों के लिए क्या करूं, वो पूछते हैं, मैं दूसरों के को खुद सीखने प्रोत्साहन कैसे दूं? पालक जो पवित्र आत्मा की नकल करते हैं, ऐसा घर बनाते हैं जहां सिद्धांत समझने की कोशिश होती है, सिर्फ सीखने की नहीं, सिर्फ सिद्धांतों के बारे में बात करने के बजाय शिक्षक दूसरों के सिद्धांत समझकर जीना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा को बाधा नहीं होती जैसे व्यक्ति चुनाव शक्ति सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की वर्तमान हालत में हमें सख्त जरूरत है असली शिक्षण और शिक्षा की, हमारे घरों और सभाओं में। मैं जानता हूँ सुधरने की प्रयास कठिन लगता है, पर कृपया अपने विकास में निराश न हो। मैं मेरे बच्चों के साथ पैदल चलने के अनुभव पर विचार करता हूँ। हमने फैसला किया था कि जब हम सांस लेने रुकेंगे, हम कितनी दूर चले हैं और चलना है उस पर केंद्रित का विचार न करते हुए हम मुड़कर नीचे देखेंगे और अच्छे दृश्य का आनंद लेंगे और फिर आगे बढ़कर चोटी की ओर देखकर चढ़ेंगे। हम बोलेंगे कि हम कितने दूर चढ़े हैं अभी, फिर गहरी सांस लेते हम तुरंत मुड़कर फिर पहाड़ चढ़ने लगेंगे कदम पर कदम डालते हुए। भाइयों और बहनों, आप आत्मा के कामों के अनुसार सक्रिय पालक निर्देशक बन सकते हो, ये करने से जीवन बदलेंगे। मेरा जीवन असली शिक्षकों से आशीष हुआ था जिन्होंने आत्मा के साथ पढ़ाया है। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के अनुसरण करने की निमंत्रण देता हूँ। मैं बयान देता हूँ कि ईसा मसीह हमारा मुक्तिदाता है और उसके सुसमाचार बहाल हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें असली पालक, असली नेता, असली शिक्षक और असली विद्यार्थी बनने निमंत्रण देता हूँ। मैं बयान देता हूँ परमेश्वर इस कोशिश में हमें सहायता देगा और इसलिए हमें असली पालक बनना चाहिए, असली शिक्षक।
God will help you in your efforts in the sacred name of our Savior.
ईसा मसीह के पवित्र नाम से आमेन।
The choir and mandali aur sabha milkar now let us rejoice gaenge. Iske baad hum 70 ke elders Kashuziko Yamasita, Randall K. Bennett, or J. Devin Cornish ko sunenge. Fir Elder Quinton L. Quick of the Quorum of the 12 Apostles hame sambodhit karenge.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka 181 Ardhavarshik General Sammelan hai.
कुछ वर्ष पहले एक रात एक नया प्रचारक एल्डर स्वान और उसकी जापानी परिचित साथी हमारे घर भेंट करने आया। सौभाग्य से उस समय में घर पर था, इसीलिए मैंने उन्हें अंदर बुलाया। जब मैंने दरवाजे पर उनका अभिवादन किया, मेरे ध्यान एल्डर स्वान की कोट पर गया। बिना सोचे मैंने उसे कहा, तुमसे सचमुच में अच्छा कोट पहना हुआ है। यद्यपि वह एक नया कोट नहीं था और असल में उसका रंग फीका हो चुका था, मैंने सोचा जो कोट एल्डर स्वान ने पहना हुआ था वो किसी पूर्व प्रचारक ने प्रचारक कमरे में छोड़ा था। एल्डर स्वान ने तुरंत मेरी बातों का जवाब दिया और जो कि बिल्कुल उसके विपरीत था जो मैं सोच रहा था। टूटी फूटी जापानी भाषा में उसने जवाब दिया, हाँ यह अच्छा कोट है, इसे मेरे पिता ने पहना था जब उन्होंने 20 वर्ष पहले जापान में प्रचारक के रूप में सेवा की थी। उसने अपना कोट दिया था। यह चित्र बताते हैं उसके पिता ने जापान के ओकायामा मिशन में सेवा की थी और जब उनका बेटा जापान में मिशन में सेवा करने जा रहा था उन्होंने उसे अपना कोट दिया था। यह चित्र बताता है कि एल्डर स्वान की दो पीढ़ियों ने उस कोट को जापान में पहना था। जब मैंने एल्डर स्वान को शब्द को सुना मैं भावुक हो गया और मुझे कारण समझ में आ गया था कि क्यों एल्डर स्वान प्रचार करते समय अपने पिता के कोट को पहनता था। एल्डर स्वान अपने मिशन पर जापान और इसके लोगों के लिए अपने पिता के प्रेम को लेकर आया था। मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों के साथ ऐसे ही अनुभव हुआ होगा। मुझे कई प्रचारकों ने कहा है कि उनके पिता, उनकी माता, उनकी दादा या उनके अंकल ने भी जापान में मिशन किया था। मैं उन सब पूर्व प्रचारकों के प्रति अपना सच्चा प्रेम, आदर और धन्यवाद की अनुभूति को व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने विश्व भर में सेवा की है। मुझे यकीन है जिन्हें आपने परिवर्तित होने में मदद की है वो आपके नहीं भूले हैं। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। मैं उन्हीं परिवर्तितों में से एक हूँ। मैं 17 साल की आयु में परिवर्तित हुआ था जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। प्रचारक जिसने मेरा बपतिस्मा किया था वो आइडहो से एल्डर रूप था। वो हाल ही में आइडहो के स्टेक अध्यक्ष के पद से निवृत्त हुआ है। बपतिस्मा लेकर नया सदस्य बनने के बाद मैं उनसे नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें ईमेल भेजे और फोन पर बात की है। मैं उन्हें कभी भुला नहीं हूं। उनकी दया, मुस्कुराता चेहरा मेरी याददाश्त में अंकित हो गया है। वह बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला कि मैं अच्छी तरह से हूं। जब मैं 17 साल का था मुझे सचमुच में उन संदेशों की अच्छी जानकारी नहीं था जो प्रचारक मुझे सिखाते हैं। फिर भी प्रचारों के बारे में मेरे पास एक विशेष अनुभूति थी। मैं उनके समान बनना चाहता था और मैंने उनके गहरे और निरंतर प्रेम को महसूस किया था। मैं उस दिन के बारे में आपके बताता हूँ जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ था। यह 15 जुलाई थी और उस दिन बहुत गर्मी थी। एक महिला ने भी उसी दिन बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा का कुंड प्रचारक ने हाथों से बनाया था और दिखने में बहुत सुंदर नहीं था। हमारे बपतिस्मे के ठीक बाद हमारा पुष्टिकरण हुआ था। पहले एल्डर लाइट के द्वारा बहन की पुष्टि की गई थी। मैं अन्य सदस्यों के साथ अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ था और शांति से उसके शब्द को सुन रहा था। एल्डर लाइट ने उसकी पुष्टि की और फिर उसने उसको आशीषें दी। जैसे एल्डर लाइट ने बोलना बंद किया वैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर बहुत उत्सुकता से देखा। आज भी मैं इस शीर्षक को अच्छी तरह याद कर सकता हूँ। एल्डर लाइट की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और अपने जीवन में पहली बार मैंने पवित्र आत्मा से घिरा हुआ अनुभव किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इस अनुसुनिश्चित ज्ञान के को पाया था कि एल्डर लाइट ने हमसे प्रेम किया था और कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था। उसके बाद पुष्टि होने की मेरी बारी थी। इसे लाइट ने ही किया था। उसने अपने हाथों के मेरे सिर को ऊपर रखा था और मेरी गिरिजे की सदस्य के रूप में पुष्टि की और पवित्र आत्मा को पहाड़ प्रदान किया था। और फिर आशीषी ने देना शुरू किया और फिर उसने बोलना बंद किया। हालांकि अब मैं जानता था मेरे सिर के ऊपर क्या हो रहा था। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा सच में जानता था कि प्रचारकों ने मुझसे प्रेम किया था और कि परमेश्वर ने मुझे इससे प्रेम किया था। अब मैं पूरे विश्व में सेवा कर रहे वर्तमान के प्रचारक से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आपका व्यवहार और प्रेम जो आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं वो अति विशिष्ट संदेश है। यद्यपि मैं तुरंत उन सभी सिद्धांतों के संबंध को समझ नहीं पाया था जो प्रचारकों ने मुझे सिखाया था, मैं उनके महान प्रेम का महसूस किया था और उनके बहुत से दया के कामों ने मुझे महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। आपका संदेश प्रेम का संदेश है, आशा का संदेश है, विश्वास का संदेश है। आपका व्यवहार और आपके काम आत्मा को निमंत्रण देते हैं और आत्मा हमें उन बातों का समझने के योग्य बनाती है जो महत्वपूर्ण है। जो बात मैं आपके समझाना चाहता हूँ वो कि आपने प्रेम के द्वारा आप वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को पकड़ कर रहे हैं। आप इस गिरजे का खजाना है। मैं आप सभी का आपके बलिदान और आपके समर्पण के लिए बहुत धन्यवादी हूँ। भविष्य के प्रचारों से भी बातें करना चाहूंगा। मेरे अपने परिवार में 4 बच्चों ने अपने मिशन में सेवा की है और इस महीने के अंत तक हमारा 5वां प्रचारक प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश करेंगे। अगले साल हमारा सबसे छोटा हाईस्कूल के बाद मिशन पर सेवा करने की योजना बन रहा है। इसीलिए मैं अपने बेटों और आप सभी से जो मिशन में सेवा करने की तैयार कर रहे हो बोलना चाहूंगा। यह जरूरी है कि आपने मिशन में 3 चीजें लाए। एक, सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा। प्रभु चाहता है कि आप उसकी भेड़ों की सुधी ले उन्हें ढूंढे। विश्व में हर तरफ लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया जहां वे वहां तुरंत पहुंचे। दूसरों को बचाने के लिए प्रचारकों से अधिक अन्य कोई प्रयास नहीं करता है। मैं उन बचाए हुए में से एक हूं। दूसरा, अपनी गवाही को विकसित करें। प्रभु को आपकी निष्ठा और इच्छुक मनो की जरूरत है। तीसरा, दूसरों से प्रेम करें। जिस प्रकार एल्डर स्वान ने किया था, जो आपने साथ अपने पिता का कोट और जापान और इसका लोगों के लिए अपना पिता को प्रेम अपने मिशन पर लाया था। और उन सभी से जो नहीं जानते कि मिशन पर सेवा की तैयारी कैसे शुरू करनी है, कृपया अपने धर्माध्यक्ष से के पास जाए और उनसे मिले। मुझे जानता हूं कि वह आपकी मदद करेंगे। मैं धन्यवादी हूं कि प्रचारों को प्रभु द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो नियुक्ति का जवाब देते हैं और कि वो पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं। मैं आप सभी प्रचारकों को बोलना चाहता हूं, मैं आपके सभी प्रयासों के लिए सचमुच धन्यवादी हूं। आप इस गिरजे का खजाना हो और आप हमेशा प्रचारक हो और मसीहा के शिष्य के समान कार्य करते रहे। मैं गवाही देता हूं कि हम अपने स्वर्ग की पिता के बच्चे हैं, कि वह हमसे प्रेम करता है और कि उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा था ताकि हम उसके उपस्थिति में फिर से जा सकें। मैं ये बातें यीशु मसीह के पवित्र नाम में कहता हूं। आमीन।
Years ago, while at the beach with my family,
सालों पहले अपने परिवार के साथ जब मैं समुद्र किनारे गया था, मैंने चिन्हों और झंडों पर गहराई एक आज आते तेज अशांत लहरों के बहाव की हमारे लिए चेतावनी को पर ध्यान दिया था। अशांत खतरा था। मैं एक अच्छा तैराक हूँ, तैरने से अच्छी व्यायाम होगा, मैं कम गहरे पानी में सुरक्षित होऊंगा। चेतावनी पर नज़रअंदाज करना और अपने आप में भरोसा कर न्याय करना, मैं पानी में तेजी से तैरने का आनंद लेने चला था। जिस छलपूर्ण लहरों के लिए मुझे चेतावनी दी गई थी उन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया था। पहले साहस के साथ और फिर आशा रहित रूप से मैं किनारे की ओर तैरने की कोशिश करने लगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरी शक्ति जाती रही। मैं आखिरकार और पागलपन से मदद के लिए पुकारने लगा। चमत्कारी रूप से लगने लगा एक जीवन रक्षक तेजी से मेरी ओर आया। वह जानता था अशांत लहरें मुझे पकड़ लेंगी और वह जानता था कि मैं कहां ले जाएंगी। किनारे की ओर अकेले तैरने से बहुत कमजोरी लगने लगी। मैं उसके बचाव के लिए आभारी हूँ। उसकी मदद के बिना मैं कभी भी अपने परिवार के पास लौट नहीं सकता था। उस दिन मैंने गलत चुनाव किया कि संभवतः मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हुए थे। जैसे हम अभी एक साथ सुनने के उपकार पर विचारते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमसे प्रत्येक की मदद हमारे चुनाव के लिए जाने की जांचने करने में करता है। मैं जरूरत से ज्यादा नहीं कह सकता कि निर्धरता परिणाम भाग्य हो। आप बिना अनंत प्रभाव के अनंत परिणाम नहीं ले सकते हैं। हम ऐसे प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता के प्रत्येक आत्मिक पुत्र या पुत्रियां हैं। अपने पहले के जीवन दौरान आपने सच्चाई को प्रेम करना सीखा था। आप जानते थे कि यहाँ नश्वरता में वहाँ की पीड़ा और विपत्ति, दुख और कष्ट, परीक्षा और प्रलोभन आपकी बढ़ने में मदद करेंगे। आप यह भी जानते थे कि आप लगातार सही का चुनाव करते रहेंगे।
What did the prophet Lehi teach about choice?
He counseled that we are free to choose liberty and eternal. हमारे माता पिता सिखाते हैं कि जब वह चुनाव करते हैं, वह उसका परिणाम को भी चुनते हैं। हाल ही में हमारी 3 साल की पोती ने रात्रि भोजन खाने से मना कर दिया था। उसकी माँ ने समझाया, यह लगभग हमारे पोता पोती सीखते हैं कि जब वो चुनाव करते हैं, वह उसकी परिणाम को भी भोजते हैं। उसकी माँ ने समझाया, यह लगभग बिस्तर में जाने का समय है। यदि तुम रात्रि भोजन खाने का चुनाव करोगी, मीठे के लिए आइसक्रीम का चुनाव करोगी। यदि तुम्हारी रात्रि भोजन न खाने का चुनाव करोगी, बिस्तर में अभी जाना होगा बिना आइसक्रीम के। हमारी पोती ने दृढ़ता से कहा, मैं यह चुनाव चाहिए, खेलना और फिर आइसक्रीम खाना और बिस्तर में नहीं जाना है। क्या हम आशा करते हैं कि खेलें, सिर्फ आइसक्रीम खाएं, कभी बिस्तर में न जाएं और किसी तरह परिणामों को, जैसे कि कुपोषण और थकावट को इनकार कर सकते हैं। वास्तविकता में हमारे पास सिर्फ दो अनंत चुनाव हैं, प्रत्येक अनंत परिणामों के साथ संसार के उद्धारकर्ता का आचरण करने और परमेश्वर। हम योग्यता में सुरक्षा और सांसारिक खतरों का सफलतापूर्वक दोनों का चुनाव नहीं कर सकते। सांसारिकता में डटना लगना हानिकारक देख पड़ सकता है, परंतु मेरे तैरने से ताजा लगा। परिवारों से और स्वर्गीय पिता से अलग करने लगती है। हमारे जीवित भविष्यवक्ता दिव्यदर्शियों और प्रकटकर्ता देखने हैं कि खोज करके हम अक्सर जटिल परंतु सांसारिक खतरों का तात्पर्य से जोखिम हमें घटता है। पहला, दैनिक धर्मशास्त्र अध्ययन और प्रार्थना करके। दूसरा, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में। और तीसरा, उन भविष्यवक्ता सलाह को समझने के दौरान पाते हैं। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उसके सुसमाचार जो जीने में है, मार्ग और अच्छाई और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कठिनाइयों और पीड़ा के दौरान पोस्ट सोवियत रूस में एंटोनियो और स्वेतलाना रेस्टनिक ने ऊपर नेकता के चुना था। उन्होंने लगातार धमकियां मिलती रहीं, फिर भी उन्होंने सुसमाचार का जीवन जीने के लिए कहा। हम सब कष्टों को झेलते हैं, हम सभी के पास प्रलोभन है, हम सभी गलतियां करते हैं। यह कभी भी कठिन नहीं है कि या देरी नहीं है कि चुनाव को सुधारा जाए। अध्यक्ष डीटर एफ उगडॉर्फ ने सिखाया, छोटी गलतियों और इन्हें से मोड़ यीशु मसीह के सुसमाचार के सिद्धांत से दूर कर हमारे जीवन में दुखित परिणाम ला सकते हैं। आत्म सुधार करते और सुधारने का संकल्प करते हैं कि गलतियां कैसे अपने आप खुद ही सही कर लेंगी, और इतनी देरी सही जाने में होगी मुश्किल होगी उस केंद्र में जहां कुछ भी नहीं हो सकता। उद्धारकर्ता की करुणा भरी बाहें हमारे लिए हमेशा भरी हुई हैं। क्षमा मिलती है और उद्धारकर्ता हमारे गुनाहों को भी कभी अदृढ़ रखते। आप चुनावों और उसके परिणामों की जांच करने में आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मसीह के शब्दों के अध्ययन करने के लिए स्वर्गीय पिता से साथ वार्ता न करने के समय निकालने का चुनाव करता हूँ। क्या मैं परमेश्वर के जीवित भविष्यवक्ता की सलाह के अनुसरण करना चाहता हूँ, या मैं सांसारिक तरीकों का अनुसरण करता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के जिस तरह से मैं महसूस या करने के बारे में खोजता हूँ? कभी भी अनंत जीवन के चुनाव करने की शुरुआत करनी के मैं देरी नहीं होती। मैं अपनी साक्षी देता हूँ कि स्वर्गीय पिता के महान आनंद की योजना के कारण हम में से प्रत्येक यीशु मसीह के पश्चाताप के द्वारा पूर्ण हो सकते हैं। हमारे ईसा मसीह के नाम है, आमेन।
My beloved sisters and
brothers. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे पिता एक एहसास शक्ति या कल्पना नहीं है, वो एक पवित्र व्यक्ति है जैसे जो धर्मगत सिखाते हैं, जिसके पास हाथ और महिमापूर्ण शरीर है, वो असली है, वो हमें हर एक को जानता है और प्यार करता है, वो हम सब सभी को आशीष देना चाहता है। यीशु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसे अगर कोई बेटा रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे और सांप दे। अगर तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छे तोहफे देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को क्यों अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? शायद एक व्यक्तिगत अनुभव तुम्हें समझने में मदद करे। मैं अस्पताल में जवान डॉक्टर था। मेरे लंबे घंटे के बाद काम करना पड़ता था और मैं अस्पताल और घर के बीच साइकिल चला कर चलता था, क्योंकि मेरे परिवार को गाड़ी की जरूरत थी। एक दिन मैं अस्पताल से घर चल रहा था। जब मैं थका हुआ था, मुझे पता था कि मेरी पत्नी को अच्छा रवैया देना चाहिए था घर पहुंचने पर। रास्ते में एक फ्राइड चिकन की दुकान थी। मुझे लगा मुझे भूख थकावट शायद कुछ कम होगी अगर मैं चिकन खरीद लूं, लेकिन जेब में केवल 29 सेंट थे। जेब में केवल 5 सेंट थे और मुर्गी 29 सेंट की थी। आगे बढ़ते मैंने पूछा भगवान से, प्रार्थना की कि मुझे शायद रास्ते में 25 सेंट मिले तो मैं कुछ खा चिकन ले पाऊँ। मैंने कहा कि मुझे वो चिन्ह के रूप में नहीं चाहिए था, पर मैं आभारी होऊंगा अगर मुझे वो आशीष मिले। मैं जमीन देखने लगा और आगे चलना चलते गया, विश्वास रखते हुए पर एक समर्पित रवैये के साथ। दुकान नजर आते ही मुझे उसके सामने रास्ते पे 25 सेंट का सिक्का देखा। आभार के साथ मैंने मुर्गी खरीदी और उसका भरपूर स्वाद लिया और आनंदित घर चला। दया में परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता और शासक है ने इस छोटी में बात में मेरी प्रार्थना सुनी थी। कोई पूछ सकता है कि इतनी छोटी बात में अगर वो दिलचस्पी क्यों लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे स्वर्गीय पिता इतना प्यार करते हैं कि जो हमारे लिए बड़ी बात होती है वो उनके लिए भी बड़ी बात होती है। वो हमें कितने और सहायता करेंगे बड़ी बातों में जो सही होते हैं। छोटे बच्चों, नौजवानों और वयस्क भी, स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीष देने की बहुत चाहत है, पर वो तुम्हारे चुनाव शक्ति पर दाखला नहीं देंगे, इसलिए हमें प्रार्थना करके तोहफे मांगने पड़ेंगे। प्रार्थना ईश्वर की एक तोहफा है हमारे लिए। मसीह के शिष्य ने प्रभु से पूछा था कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। उसने उदाहरण दिया, आपका नाम पवित्र हो। हमारे पिता जो स्वर्गीय पिता हैं, हम बात करते हैं स्वर्गीय पिता से, हम किसी व्यक्ति से प्यार बात नहीं करते। हमें दोहराने ना नहीं चाहिए प्रार्थना। आपका नाम पवित्र हो। यीशु ने पिता को शुद्धा की प्रवृत्ति में पुकारा और उनकी महानता पहचानी, परमेश्वर को आदर और तुलसी शुक्रिया अदा की। परमेश्वर को आदर और दिल से शुक्रिया देना प्रभावशाली प्रार्थना के जरूरी है। आपका राज्य आए, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु पर निर्भरता व्यक्त करने से और उसकी मर्जी पूरी करने की कामना, चाहे वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो। प्रार्थना वो क्रिया है जिससे हमारी और ईश्वर की मर्जी एक होती है और उससे हम वो आशीष पा सकते हैं जो ईश्वर हमें देना चाहता है। फिर उसने कहा, हमें प्रतिदिन की रोटी दो। हम परमेश्वर से हमारी जरूरतें मांगते हैं। परमेश्वर से मांगते हुए ईमानदारी की जरूरत है। विद्यालय में परीक्षा के समय देते हुए अगर हमने पढ़ाई या अपना कार्य न किया हो तो मदद मांगना ठीक नहीं है क्योंकि हम ईमानदार नहीं होगा. हमें वो कार्य करने चाहिए जो हमें हमारा हिस्सा करना चाहिए. प्रभु हमारे लिए वो नहीं करेगा जो हम खुद के लिए कर सकते हैं. और हमारे कर्ज माफ करें या दूसरे या हमारे पाप माफ करें. प्रार्थना के लिए जरूरी है कि हमसे जिन्होंने गलत किया है उन्हें भी हम माफ कर दें. जैसे हम अपने हमें भी माफ करिए. मसीहा ने हमारे क्षमा पाने के संबंध हमारे दूसरे को क्षमा करने से स्पष्ट तरीके से जोड़ा था. हमारे खिलाफ किए दुष्कर्म बहुत दुखदायी होते हैं जिन्हें भूलना और माफ करना कठिन होता है. मैं उस दुलासे को के लिए कृतज्ञ हूँ. फिर प्रभु ने कहा और हमें लालच में न पड़ने दो पर दुष्टता से बचाओ. इस प्रकार अपनी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर का सुरक्षा कवच पहनना शुरू करते हैं और आने वाले दिन के खतरे से बचाव मांगते हैं. कृपया मेरे मित्रों प्रभु से तुम्हारी सुरक्षा और उसके साथ साथ मांगना न भूलें. फिर क्योंकि राज्य शक्ति और महिमा सदा तुम्हारी है. कितना आवश्यक है कि यीशु ने फिर परमेश्वर की प्रशंसा की और उसकी ओर खुद का आदर और समर्पण व्यक्त किया. अब हम विश्वास पाते हैं कि राज्य परमेश्वर का है और सर्वशक्तिशाली और महिमापूर्ण है. हम पहचानते हैं कि सब उसके नियंत्रण में है और हम से सिद्ध प्यार करते हैं और हमारी खुशी चाहते हैं. आनंदित जीवन का रहस्य है प्रभु के अनुसार कार्य करना. कोई सोच सकता है वो प्रार्थना के लायक नहीं है. ये शैतान की चाल है. हो सकता है कि हम प्रार्थना न करें जो चाहता है हम प्रार्थना न करें. पाप में डूबे को प्रार्थना करना उतना ही आवश्यक है जितना बीमार को वैद्य के पास जाना. प्रार्थना चाहे गंभीर हो उसे सिर्फ बोलना काफी नहीं है. प्रभावशाली होने के लिए उन्हें जीना भी चाहिए. प्रभु उससे ज्यादा प्रसन्न होता है जो प्रार्थना करने के बाद काम भी करने लगता है. दवाई जैसे प्रार्थना तभी काम करती है जब उसे निर्देशन के रूप से इस्तेमाल किया जाता है. जैसे निर्देशन किया है वैसे इस्तेमाल किया जाता है. प्रार्थना एक सौभाग्य है. सिर्फ स्वर्गीय पिता से बात करने के मौके के लिए नहीं है पर इसलिए वो वाकई में हमें जवाब देते हैं. प्रधान बॉयड के पैकर समझाते हैं वो मधुर शांत प्रेरणा के शब्द एहसास के रूप में आते हैं. शुद्ध ज्ञान का मन से संपर्क होता है. ये मार्गदर्शन विचारों के रूप में और एहसास द्वारा प्रेरणा और धारणा द्वारा आते हैं. अपनी हार्दिक प्रार्थना का जवाब ना हो सकता है. विश्वास की जरूरत है. याद रखो कि प्रभु अपने समय और तरीके से आशीष देता है. कभी कभी थोड़ा और सोचने पर हमें पता पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए या हमें वो पता है क्या करना चाहिए. हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर तुरंत जवाब न मिले. नई भाषा सीखने जैसे अभ्यास और प्रयास लगता है. याद रखो कि हम आत्मा की भाषा सीख सकते हैं और जब हम सीखेंगे वो हमें विश्वास और शक्ति देगा. मैं अपने प्रिय पैगंबर प्रधान थॉमस मॉनसन की सलाह मानता हूँ. उसने जिसने कहा जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो कठिनाई में हैं प्रार्थना से तुम प्रभु की मदद पा सकते हो. वो तुम्हारा पासपोर्ट है शांति के लिए. प्रार्थना वो मार्ग है जिससे हम स्वर्गीय पिता से बात करते हैं. प्रार्थना द्वारा स्वर्गीय पिता के पास जाने का सौभाग्य के लिए मैं आभारी हूँ. मुझे अनगिनत बार जवाब मिला है क्योंकि मैं जवाब हमेशा चमत्कारी ढंग से देता है. मैं जानता हूँ वो जीवित हैं. मैं बयान देता हूँ यीशु उनका बेटा हमारा जीवित उद्धार करता है. ये उसी का गिरजा और राज्य है. ये कार्य सच्चा है. थॉमस एस मॉनसन उनके पैगंबर है. मैं ये बयान ईसा मसीह के नाम से देता हूँ. Thomas S. Monson, for whom we fervently pray, is his prophet.
of which things I testify with full certainty in the name of Jesus.
Amen.
Many people face significant problems.
इस पार्थिव जीवन में बहुत से लोगों को अर्थपूर्ण परेशानियों का या यहाँ तक दुखद घटना का सामना करना पड़ता है। संसार में जब जगह सब जगह हम परेशानियों और विपत्तियों के उदाहरण देखते हैं। टेलीविजन पर मौत की तस्वीर आदि कष्ट और निराशा हम में से होकर हमारी आत्मा से गुजरते हैं। हम देखते हैं कि जापानी सुनामी और भूकंप से हुई तबाही से निपटने का संघर्ष कर रहे हैं। वो ट्रेड सेंटर इमारत की विनाशक तस्वीरें जिसे हमने अभी दोबारा देखा था, फिर से उसे जीना दर्दनाक था। ऐसी कुछ दुखद घटनाओं के बारे में जानना कभी कभी भावुकता से गुजरना होता है, विशेषकर जब वह मासूम लोगों द्वारा भुगती गई हो। कभी कभी दुखद घटनाएं बहुत व्यक्तिगत होती है। एक बेटा बेटी का युवावस्था में मृत्यु हो जाना या विनाशकारी बीमारी से पीड़ित ग्रस्त होना, एक प्रिय अभिभावक का जीवन बिना किसी विचार के लेना या दुर्घटना का होना। जब कभी दुखद घटना घटती होती है, हम शोक और दूसरे के बोझ के हल्का करने में लग जाते हैं। हम उन बातों के लिए शोकित होते हैं जो कि पूरी तरह पूरी नहीं हुई हो और गीत जिसे गाया न जा सका हो। गिरजाघर के मार्गदर्शकों से लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता रहे, क्यों कर परमेश्वर बुरी चीजों की होने देता है, विशेषकर अच्छे लोगों के साथ? क्यों कर वो जो नेक और प्रभु की सेवा करने वाले ऐसी दुखद घटना उसे बचाए न गए? यद्यपि हम इस सभी को जवाब नहीं जानते हैं, हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों को तो जानता है जो हम विश्वास और भरोसे के साथ दुखद घटनाओं के सामना करने देते हैं, कि हम सबों के लिए आशा से भरा उज्जवल भविष्य है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला, हमारा पास स्वर्ग का पिता है जो हमें व्यक्तिगत रूप से जानता और प्रेम करता है और हमारी तकलीफों के परिपूर्ण से समझता है। दूसरा, उसका पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, जिसका प्रायश्चित न सिर्फ हमें उद्धार उत्कर्षता प्रदान करता है परंतु जीवन के सारे अविश्वसनीयता का हुई हानि की पूर्ति करेगा। तीसरा, पिता की आनंद की योजना उसके बच्चे के लिए न सिर्फ पहले का और पार्थिव जीवन भी शामिल है परंतु अनंत जीवन भी है, उनके साथ महान और महिमा पूर्ण पुनर्मिलाप भी जो हमें छोड़कर चले गए है शामिल है। सभी गलतियों के सुधार सकेंगे और हम पूर्णता के साथ स्पष्टता से और दुष्मुक्त दृष्टिकोण और समझदारी के साथ देख सकेंगे। सीमित दृष्टिकोण में से उनके लिए जिनके पास ज्ञान समझदारी या पिता की योजना में विश्वास नहीं है, जो सिर्फ संसार के नाशवानता के लेंस के द्वारा उसके युद्ध हिंसा बीमार और बुराई के साथ देखते हैं, यह जीवन निराशक अस्तव्यस्त अविश्वसनीय और अर्थहीन हो सकता है। गिरजाघर के मार्गदर्शक इस दृष्टिकोण की तुलना उनके साथ करते हैं जो तीन त्रिशों के नाटक के मध्य चलते हैं। वह जो पिता की योजना के ज्ञान के बिना समझ के बिना पहले दृश्य या पूर्व जीवन की उपस्थिति और वहां पर स्थापित हो दृश्य में क्या हो रहा हो ना, वो तीसरे दृश्य में स्पष्टता और विश्लेषण को हुई समझते है जाकि हो जो कि तीसरे दृश्य में आने वाला है जो पिता की योजना का महिमा से परिपूर्ण है। बहुत से प्रोत्साहित नहीं होता है कि उसके प्रिय और समझदार योजना के तहत उनके जो बिना किसी कारण के असुविधा में अपने आप से विरुद्ध के अंत में प्रकट होता है। लगभग छह महीने में यात्री जहाज टाइटैनिक की समुद्र में डूबने की दुखद घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस भयानक विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों से घिरी घटना जब इससे यह हुई है, पूरी शताब्दी लोगों पर गहरा असर छोड़ा कहे। नई शान शौकत से भरा जहाज के संस्थापक चीनों ने 11 मंजिल ऊंचा और लगभग 250 मीटर बड़ा ने टाइटैनिक को के सुरक्षा के अधिकतम और अनुचित प्रबंध का बनाया था ने आइसबर्ग के ठंडे पानी से भरा गया था। यह जहाज तकरीबन डूबने वाला नहीं था जब वह बर्फीले अटलांटिक महासागर के सतह में डूबा 1500 आदमी से आत्मा से अधिक ने नाशवर जीवन छोड़ दिया था। कई तरीकों से टाइटैनिक का डूबना जिंदगी के लिए एक लक्ष्य और सुसंसार के बहुत से सिद्धांत है। वो यह कठिनाई के सिर्फ संपूर्ण उदाहरण है। इस नाशवर जीवन के लेंस के द्वारा देखने का है। जीवन को खोने की दिव्य आपदा, उसका परिणाम है परंतु प्रकृति के दिख दुर्घटना। दो विश्वयुद्ध में सामूहिक अत्याय और अभी गुजरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों के विनाश की दसवीं वर्षगांठ। हमने अपने समय से में सदमे, पीड़ा और बुराई की अभ्यास का चुनाव करते नैतिक संबंधी घटनाओं से घिरी होने के परिणाम के एक झलक देखा है। यह परिवार, मित्रों और राष्ट्र को दुखद विपत्तियों के नतीजों का बेवजह के कारणों का भयानक परिणाम है। टाइटैनिक के विषय में खतरनाक पानी की यात्रा करने और घबराने के खतरे से सबक सीखा था और कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। जो उसमें शामिल थे सब जीवनों से चले गए। कुछ अमीर और प्रसिद्ध थे और जैसे जान, जेकब, एस्टर, परंतु उनमें मजदूर, दूसरे देश में जाकर बसने वाला, औरतें, बच्चे, नाविक दल के सदस्य भी था। उस वक्त में लगभग दो अंतिम दिनों का संत का संबंध टाइटैनिक से था। दोनों में आपने परेशानियों, कठिनाइयों, चुनौतियों में समझदारी दिखाई और दुखद घटनाओं में भीतरी ताकत की थी कि हम कैसे उनसे निपट सकते हैं। पहला एक उदाहरण आशीषों के लिए प्रोत्साहित होना जो हम प्राप्त करते हैं और चुनौतियां के हम नकारते हैं। इसमें शामिल है अल्मा सोनी, जिसने बाद में जनरल अधिकारी के रूप में सेवा की थी। वो मेरा पहले स्टेक अध्यक्ष थे जब मैं लोगन, यूटा में पैदा हुआ था। एल्डर सोनी का साथ मेरा मिशन का साक्षात्कार हुआ। उन दोनों में भावी सभी प्रचारों की का साक्षात्कार जनरल अधिकारी द्वारा होता है। उनका गहरा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा था। जब अल्मा एक युवा थे, उनका पास गिरिजा में एक कम सक्रिय एक मित्र नाम फेरेट था। उनका मिशन सेवा के विषय पर कई चर्चा हुई थी और तकरीबन अल्मा सोनी ने फेरेट को तैयारी और सेवा के लिए विश्वास दिलाया था। उन दोनों को ब्रिटिश मिशन पर बुलाया गया था। उन्हें मिशन की संपत्ति पर एल्डर सोनी मिशन सेक्रेटरी ने यूनाइटेड स्टेट लौटने के लिए उनकी यात्रा का प्रबंध किया था। उसने टाइटैनिक पर अपने लिए, फेरेट और अन्य चार प्रचारक के लिए जिन्होंने अपना मिशन समाप्त किया का टिकट लिया था। जब जाने का समय आया था, किसी कारण बस फेर को देरी हो गई। एल्डर सोनी ने उस आलिशान जहाज के प्रथम श्रेणी की सभी 6 टिकट को लौटा दिया था और यात्री जहाज की जो कि अगले दिन जाने वाला था की टिकट ले ली थी। वो चारों प्रचारक जो टाइटैनिक पर जाने से बहुत प्रसन्न थे, निराश हो गया। एल्डर सोनी का जवाब जोसेफ और उसके मिश्र में उसके भाइयों के जो उत्पत्ति का लेखा का सामान्य था, उसका कैसे हम अपने परिवार में लौट कर जाएगा जब वह हमारे साथ न होगा। उसने अपने साथियों को समझाया था कि वह सब साथ इंग्लैंड आए थे और वह सब साथ ही घर लौटेंगे। एल्डर सोनी ने बाद में टाइटैनिक के डूबने का अंजाम जाना और आभार पूर्वक अपने पितर फ्रेड से कहा था, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। फ्रेड ने जवाब दिया, नहीं, इस मिशन पर लाने से तुमने मेरा जीवन बचाया। उनको बचाने के लिए सभी प्रचारकों ने प्रभु का धन्यवाद किया था। कभी कभी एल्डर सोनी का स्थिति और उनके प्रचार साथियों के साथ के रूप में उन पर महान आशीष आती है जो विश्वासी होती है। हमें अपने जीवन में आई सभी दया के लिए आभारी होना चाहिए। हम बहुत सी आशीषों से अज्ञात होते हैं जो कि दिन प्रतिदिन हमें प्राप्ति होती है। ये हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे दिलों में आभार की आत्मा हो। धर्मशास्त्र साफ करते हैं जो कि नेक है उदारकर्ता का अनुसरण करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर भूमि में उन्नति करेंगे। उन्नति के लिए जरूरी तत्व है हमारे जीवन में आत्मा का होना। इसीलिए नेकता, प्रार्थना और विश्वासी होना नाश्वर जीवन का अंत समय हमेशा परिणाम खुशी नहीं होगा। बहुत की अधिक परीक्षाओं का जीवन करना अनुभव करना होगा। यह जब होगा, विश्वास हमारे पास होगा और परमेश्वर की अनुमति द्वारा प्रभु के आशीष का खोजेगा। प्रभु ने घोषणा की थी कि एल्डरों की बुलाहट होना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके सिर पर उसका नाम में हाथ रखकर, और यदि वह मर गए वह उसके लिए मरेंगे और यदि वह जीते है उसके लिए जाएंगे। यह उपदेशात्मक है कि दूसरा अंतिम दिनों का संत के टाइटैनिक के साथ संबंध खुशनुमा अंत नहीं हुए है। आइरिन कार्वेट 30 साल की थी। प्रोबो यूटा से वो एक पत्नी और माँ थी। उसके पास विशेष हुनर जैसे एक कलाकार और संगीत कला की थी कला थी। वो एक अध्यापक और एक नर्सी भी थी। प्रोबो में चिकित्सा व्यवसाय के निवेदन पर उसने लंदन में 6 महीना की प्रसूत विधा का अध्ययन किया था। यहाँ इसकी अपार कामना थी कि उस संसार में भिन्नता लाए। वो देखभाल विचार और प्रार्थना करने वाली और पराक्रमी थी। उसके टाइटैनिक से अमेरिका लौटना चुनाने का एक कारण यह था कि उसने सोचा कि प्रचारक उसके साथ यात्रा करेंगे और यह कि उसके सुरक्षा प्रदान करेंगे। आयरिन उन कुछ औरतों में से एक थी जो उस दुखद घटना से बची नहीं थी। ज्यादातर औरतों और बच्चों के जीवन सुरक्षा नावों में डालकर आखिरकार बचा लिया गया था। वह पर प्रत्येक के लिए सुरक्षा नाव पर्याप्त नहीं थी, बल्कि यह माना जाता है कि सुरक्षा नाव पर चली नहीं थी क्योंकि उसने उसके विशेष अभ्यास के साथ वह जरूरतमंद यात्रियों के ध्यान रखे हुए थी जो आइसबर्ग के टक्कर खा से जख्मी हो गए थी। यहाँ पर कई तरह की चुनौतियां हैं। कुछ हम जरूरी अनुभव देता है इस नाश्वर जीवन में हानिकारक परिणाम विश्वास की कमी के या हमारे स्वर्ग में पिता की योजना संबंधी अभाव का सबूत नहीं है। शुद्ध करने वाली आग वास्तविक है और चरित्र के गुण और निकटता जो कि कठिन कष्टों के अनुभवों से पूर्ण और शुद्ध हमें बनाता है और हमें परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करता है। जब जोसेफ स्मिथ लिबर्टी जेल में एक कैदी थे, प्रभु ने उन्हें घोषणा की थी कि बहुतायत से मानव जाति पर तबाही हो सकती है। उद्धारकर्ता ने उस भाग में कहा था कि यदि जोसेफ का गहराई में डाल दे, यदि विशाल लहरें गति से उसके विरुद्ध आए, यदि तीव्र वायु उसके शत्रु बन जाए और सारे तत्व मिलकर रास्ते के घेरे, ये सब बातें उसे अनुभव देगी और उसके लिए अच्छा होगा। उद्धारकर्ता ने अपने निर्देश का सारांश कहने का द्वारा दिया था कि जोसेफ के दो दिनों का जाना जाएगा और उसके वर्षों की गिनती कम नहीं होगी, इसीलिए उसने डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहेगा। कुछ चुनौतियां दूसरों के चुनाव का नतीजा होती है। व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति और प्रगति के लिए चुनाव करना जरूरी है। बुरा व्यवहार का चुनाव एक तत्व है। कप्तान मोरोनी ने समझाया था इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक का मरना इसीलिए सहन करता है जिससे कि उस न्यायदंड मापियों के ऊपर गिरे। उसने इस परमेश्वर धार्मिक का मरना इसीलिए सहना करता है उस साफ किया था। इसीलिए तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धार्मिक मारे जाने का कारण मिट गया है, लेकिन सुनो, वो ये आपने प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हो नहीं सकता है कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उसे मनुष्य पर जिसके कारण वो जाती है। कुछ चुनौतियां परमेश्वर के नियमों को आज्ञाकारिता करने से आती है। स्वास्थ्य परेशानियां, धूम्रपान, शराब और दवाई को अनुचित तरह से लेने के कसदमे का परिणाम होती है। जेल में कैद होना और जिस शराब का परिणाम और दवाइयां संबंधित गुनाह भी काफी अधिक है। मेरा प्रिय मिशन अध्यक्ष एल्डर मेरियन जी हंग्स, जो अगस्त में गुजर गए, ने हमें से पूछा था कि प्रचारक के नाश्वर चुनौतियों को झेलने के लिए एक बयान को याद करना है। यहाँ पर कोई न मौका, न वाक्य, न मंजिल है जो कि कठिन दशा से बाहर निकलने या विघ्न डालने या मजबूती से रोकने का समाधान करने का व्यक्ति निर्णय कर सकता है। वह ये जानते हैं कि यह सभी चुनौतियों पर लागू नहीं होता है। हम वीरते हैं, परंतु यह आत्मिक विषय में सत्य है। मैं उनकी सलाह का आप अपने जीवन में समर्थन करता हूँ। टाइटैनिक पर भयंकर तरह से जीवन के खोने का यह भी कारण था कि वह पर सुरक्षा नाव प्राप्त नहीं था। परेशानियों में संबोधित करना जो हम इस जीवन में झेलते हैं, उद्धारकर्ता की प्रायश्चित प्रत्येक के लिए सुरक्षा नाव प्रदान करते हैं। जो कही ये सोचते हैं कि परेशानी का सामना करना ठीक नहीं है, प्रायश्चित सभी ठीक न होने वाला को भुगतान करता है। एक अनोखी चुनौती उनके लिए जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है, इनकार करते हैं इस जीवन के खोए हुए मौके के बारे में अधिक सोचकर। अक्सर जो जल्दी मर जाते हैं, महत्वपूर्ण योग्यता, रुचि और हुनर का प्रदर्शन करते हैं। हमारी सीमित समझदारी के साथ हम चीजों के जो पूरी नहीं हुई और गीत जिसे गा न सके के लिए शोक करते हैं, यह वर्ण करता है जैसे आपका संगीत आपके साथ अंदर ही मर रहा है। संगीत इस संबंध में किसी भी प्रकार के वाक्य का पूरा न होने का लक्षण है। कभी कभी हम लोग महत्वपूर्ण तैयारी करते हैं पर नश्वरत के में दिखाने का मौका नहीं मिलते। जानी मानी एक कहावत है, इसे कुछ असफल मौके पर लिखित है। कई फूल बिना देखे खिले ही मुरझा जाते हैं और उसकी सुंदरता रेगिस्तान की हवा में व्यर्थ हो जाती। खोया हुआ मौका स्याद पर व्यवसाय, हुनर, अनुभव या अन्य से संबंध रखते हैं। ये सभी बहन कॉर्बेट की मामल में छोटे पड़े जाते हैं। वहाँ पर कित जिसे वह गा न सकी और भाग्य जिसे वो इस नाश्वर जीवन में पूरा न कर पाई, परंतु सुसमाचार के लेंस के द्वारा चौड़े में स्पष्ट से दिखा पाई थी। इस सीमित लेंस के साथ पर नाश्वर जीव अस्तित्व निरामात्र है। हम जानते हैं प्रिय स्वर्ग में पिता ने अपनी योजना में अनंत में महान पुरस्कार का वादा किया है, जैसा कि पौलुस ने सिखाया, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य ने चित्त में नहीं चढ़ी, वो वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले हैं। उद्धारकर्ता ने कहा, यद्यपि तुम्हारे मन में आराम हो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हमारे उसका वादा है कि हम अपने बच्चों का साथ सदा का आनंद का गीत गाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
As we conclude,
अब जब हम इस सम्मेलन का समापन करते हैं, हम सुंदर और प्रेरणादायक संगीत के लिए मंडप गायक मंडली प्लेजेंट व्यू और नॉर्थ ऑर्टन यूटा से प्राथमिक के बच्चों की गायक मंडली और प्लेजेंट ग्रोव यूटा के पुरोहित गायक मंडली की सराहना करते हैं। हम संचालकों और वादकों का उनकी मेहनत और तैयारी के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार हम उन्हें सभी को अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने बोला और सभी की जिन्होंने किया है। इस सत्र का अंतिम वक्ता प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन होंगे। उनके बोलने के पश्चात गायक मंडली लॉर्ड वी आस्क दी एयर वी पार्ट गाएगी। इसके पश्चात समापन प्रार्थना सत्र के एल्डर ग्रेगरी ए सर्चर द्वारा होंगे। इस सत्र के समापन सत्र होगी प्रेसिडेंट मॉन्सन।
My brothers and sisters,
मेरे भाइयों और बहनें, मैं जानता हूं कि सहत होंगे कि ये उत्तम प्रेरणादायक सम्मेलन रहा है। पिछले दो दिनों में हमने प्रभु की पवित्र आत्मा को महसूस किया है। हमारी टेस्टिमोनीज मजबूत हुई हैं। हम प्रार्थनाएं भाइयों सहित हर एक के आभारी हैं जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया है। आपके प्रेरणा करता हूँ कि हमारे सुग्रीव पिता हम सब को जानते हैं। मैं मानता हूँ कि सब कामों में उसका साथ होता है। एक बार फिर संगीत शानदार रहा है और मैं उनको अपना व्यक्तिगत आभार और संपूर्ण गिरजा का आभार व्यक्त करता हूँ अपनी प्रति लोगों को हमारे साथ बांटने के लिए। उन्होंने विश्वसनीय और उत्तम सेवाएं दी हैं और प्रभु के कार्य में बहुत योगदान दिया है। मैं अपने विश्वसनीय और संप्रलित सलाहकारों के प्रति आगाह प्रशंसा व्यक्त करता हूं और मुझे सहारा और मदद करते हैं और उनके सेवा अनमोल है। मैं 12 प्रेरितों के परिषद के अपने भाइयों को प्रभु के काम में उनकी अंतर निरंतर सेवाएं धन्यवाद देता हूँ। मैं उसी तरह उन स्त्रियों और पुरुषों के प्रति प्रशंसा व्यक्त करता हूँ और जनरल सहायकों
अधिकारियों के रूप में सेवा करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी स्वर्गीय पिता उन चुनौतियों को जानते हैं जिनका सामना हम आज संसार करते हैं। वे हमें प्रत्येक से प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं जब हम उनके आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करेंगे। हम यीशु मसीह के पुनः स्थापित सुसमाचार को पाकर बहुत ही आशीषित हुए हैं। ये हमारे कुछ सवालों के जवाब देती है। हम कहाँ से आए, हम यहाँ क्यों हैं और कहाँ जाएंगे। वह हमारे जीवन के को अर्थ और उद्देश्य और आशा देती है। मैं उस सेवा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इतनी अच्छी तरह से देते हैं। परमेश्वर के बच्चों को प्रेरण करने और देने के आदेश के साथ यहाँ पृथ्वी पर उनके साथ हैं। मैं अब दिनों जिन पदों पर आपको नियुक्त किया गया है उसमें सेवा करने की इच्छा के लिए आपको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मेलन अब समाप्त होता है। जब हम अपने घर को जाते हैं, हम सुरक्षित पहुँचें, हमारी अनुपस्थिति में सब कुछ ठीक रहे। जो आत्मा हमने यहाँ महसूस की है वह हमारे साथ उस समय में कायम रहे जो हमारे प्रतिदिन के कामों को करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति अधिक दया का प्रदर्शन करें। हम हमेशा प्रभु का काम करते हुए पाए जाएं। स्वर्ग की आशाएं आपके साथ हों। आप अपने गवाहियों का निरंतर पोषण करें आपके विनम्र सेवक के रूप में। मैं अपने पूर्ण हृदय से प्रभु की इच्छा और उसकी सेवा और आपकी सेवा करने की आशंका रखता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर अपने कहना चाहता हूँ कि आप मुझे याद रखें और सभी अध्यक्षताओं को अपनी प्रार्थना में याद रखें। हम आपके साथ एक हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ कि हम सभी इसमें एक साथ हैं और हर आदमी, व्यक्ति, स्त्री और बच्चा अपना काम कर सकता है। परमेश्वर हम सबको अपनी भूमिका को अच्छी तरह पूरी करने की शक्ति और योग्यता दे। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि यह काम सच्चा है, कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और कि वह यहाँ पृथ्वी पर अपने गिरजा के मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। मैं आपको अपनी गवाही और अपनी साक्षी देता हूँ कि परमेश्वर हमारा अनंत पिता जीवित है और हमसे प्रेम करता है। वह वास्तव में हमारा पिता है और वह व्यक्तिगत और सच है। काश हम महसूस करें कि हमसे वह हमारे कितने निकट आना जाता है, कितने दूर चलकर वह हमारी मदद करना चाहता है। वह आपको आशीष दे। काश उसके शांति के वादे आपके साथ अब और हमेशा तक रहें। मैं आपको जब हम 6 महीने के अंतराल में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ। ईसा मसीह के नाम में, हमारे उद्धारकर्ता के नाम में, आमेन।
हमारे स्वर्गीय पिता, इस सभा की समाप्ति में हम अपना शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए जो हमें सिखाया गया है आपके सेवकों के द्वारा। हम आभारी हैं एक जीवित पैगंबर के लिए जिसकी सलाह कर और दूसरे सामान्य अधिकारियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना करके तैयारी की है इस सम्मेलन के लिए और हमें सिखाया है। हम आपसे मांगते हैं कि हम अपना आपके प्रायश्चित करने का निमंत्रण स्वीकार करें, आपके बेटे का उदाहरण का पालन करें और उसकी आज्ञा पालन करें। हमें मदद करो कि हम दूसरों को की ओर अच्छा बर्ताव करें। हमें घर सुरक्षित पहुँचाइए और हम आभारी हैं उन सभी के लिए जो हमने सीखा है इस दिन ईसा मसीह के नाम से। आमीन।
This has been a broadcast.
Yeah, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka 181 ardhvarshik general sammelan tha. इसे गिरजाघर के जनरल अधिकारी और जनरल पदाधिकारी में से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया और इस सत्र का संगीत और मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया। यह प्रसारण बोनिवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक रूप में किया है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलोभन का अन्य प्रयोग वर्जित है।